جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. سورہ فرقان کی تفسیر کے آخری چند باتیں رہ گئی ہیں، تو اس میں جو آیت نمبر 63 سے لے کر کے 77 تک اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں، تو یہ ہم نے پڑھ کے مکمل کر لی تھی پچھلی کلاس میں. کل 13 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اپنے ان خاص مقبول بندوں کی. ان میں سے 13ویں اور آخری صفت تھی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، یا اگر بیویاں ہیں تو اپنے شوہر اور اپنے اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے. یعنی یہ لوگ جو کہ ہمارے تحت ہیں، جیسے بیوی بچے مرد کے تحت ہوتے ہیں اور بچے عورت کے تحت ہوتے ہیں، تحت کا مطلب نیچے، تو عورت جو ہے وہ بچوں کی امام ہوتی ہے، عورت بچوں کی امام ہوتی ہے. تو اگر بچے نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، تو عورت جو ہے وہ متقیوں کی امام بن جائے گی. تو دراصل دعا کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میرے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے. تو آیت کے اس دوسرے حصے نے پہلے حصے کی بھی تشریح کر دی. پہلا حصہ کیا تھا کہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ٹھیک ہے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے کہ آنکھوں میں کوئی ٹھنڈا پانی میرے لگتا رہے ہر وقت، یا کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں میری آنکھوں میں. کیا مطلب ٹھنڈا آنکھوں کی ٹھنڈک کا؟ تو متقی بنا دیجئے. وجعلنا للمتقین اماما سے بات بالکل کنفرم ہو گئی کہ اولاد متقی بنے گی تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے گی، ٹھیک ہے. شروع میں لگتا نہیں ہے کیونکہ وہ ذرا ہماری مرضی کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. اگر ہم خود متقی نہیں ہوتے ہیں، اگر ہم خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے درجے پر ابھی نہیں پہنچے ہوتے ہیں، تو اولاد کا دین جو ہے وہ آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ پھر اللہ، اس کے رسول اور اللہ رسول کے دین کو سمجھانے والے علماء اور مشائخ، ان کی بات ماننا شروع کر دیتی ہے، تو وہ ہماری بات نہیں مان رہی ہوتی کیونکہ ہم تو ابھی دین کے اوپر، دین کی سمجھ ہی ہمیں نہیں حاصل ہوئی ہے صحیح طریقے سے نا. تو وہ ہماری ماننے کی بجائے جو ہے پھر وہ علماء اور مشائخ کی ماننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک فیز ہوتا ہے کہ جس کے اندر والدین اولاد کے خلاف ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کی نہیں مان رہی ہوتی ہے، اور کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کی اولاد اس کی نہیں مانے بلکہ کسی اور کی مانے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں والدین اولاد کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور بہت مشکل وقت پیدا ہو جاتا ہے، والدین کے لیے بھی ظاہر ہے اور اولاد کے لیے بھی بہت مشکل وقت ہو جاتا ہے. لیکن اگر والدین اپنی نسبت مضبوط کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور دین کے علماء مشائخ کے ساتھ، اگر والدین اپنی نسبت مضبوط کرتے رہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر والدین بھی اللہ رسول کی ماننا شروع ہو جاتے ہیں، علماء جیسا سمجھاتے ہیں ویسے اللہ اس کے رسول کی ماننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اولاد بھی اللہ رسول کی مان رہی ہوتی ہے، تو اب دونوں ہی एक ही चीज की मान रहे हैं, दोनों ही एक ही अथॉरिटी की मान रहे हैं, तो अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। ठीक है, तो इस मसले का हल जो है ना वो ये है कि वालिदैन जो हैं वो फिर खुद अपनी ऊपर से जो ताल्लुक है, नस्बत है, उसको मजबूत करने की फिक्र करें। ठीक है, यहाँ पर गलती कर जाते हैं दीनदार वालिदैन खास तौर पर, कि वो समझते हैं कि जी उन्होंने जो पढ़ा है, जो सुना है ना, बस वही कामिल दीन है, वो जैसे समझ रहे हैं वही बस दीन है। ठीक है, तो ये उनकी उनकी गलतफहमी होती है। ऐसा दीन, ये दीन की समझ जो है ना ये सही नहीं होती है, इसके अंदर शैतान की इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है। ठीक है, तो वालिदैन गलत समझ रहे होते हैं कि वो सही दीन पर अमल कर रहे हैं, और औलाद को समझ रहे होते हैं कि वो गलत दीन पर अमल कर रही है, और इस तरीके से फिर एक झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से समझना चाहिए कि दीन की जो है ना वो समझ हासिल करने का तरीका उलमा मशाए से पूछ करके चलना है, ना ये कि किताबें पढ़ करके और लेक्चर सुन सुन करके खाली। ठीक है ना, लेक्चर सुने तो फिर पूछना भी होता है कि जी इस लेक्चर का मतलब क्या है, मेरे ऊपर ये लेक्चर कैसे अप्लाई होता है, वरना लेक्चर की हैसियत भी जो है ना वो सिर्फ एक किताब की रह जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये कि लेक्चर भी एक किताब की तरह बन जाता है। ये जैसे क्लास सुन रहे हैं ना, तो ये जो क्लास का आपका सुनना है ना, ये अगर आप पूछेंगे नहीं ना कि ये मेरे ऊपर कैसे अप्लाई होती है, तो ये क्लास भी आपके लिए महज एक किताब है, थ्योरी है महज, इससे ज़्यादा इस क्लास की हैसियत नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, तो इसमें ना फिर आप जिस तरह किताब पढ़ करके इंसान मिसअंडरस्टैंड कर जाता है चीज़ों को, उसी तरीके से लेक्चर सुन करके इंसान मिसअंडरस्टैंड कर जाता है बातों को। ठीक है ना, कुछ को कुछ समझ लेता है, इस वजह से इट हैज़ टू बी इंटरैक्टिव। ठीक है, पूछना होता है कि जी इसका क्या मतलब था, मेरे ऊपर एक चीज़ कैसे अप्लाई होती है। तो ये सारी बातें करके अब हम आखिरी सफ़ा इस सूरत की तफसीर का पढ़ना शुरू करते हैं, पेज नंबर 510 के ऊपर, जिसमें अल्लाह ताला ने ये जो आखिरी आयत थी कि उलाइका युजज़ौनल गुरफता, यानी ये लोग जो होते हैं ना जिनकी ये 13 सफ़ात बयान की गई हैं, तो इनकी जजा क्या होती है, इनकी जजा होती है अलगुरफा, इनको एक कमरा दे दिया जाता है। गुरफा का मतलब होता है कमरा, तो इनको कमरा दे दिया जाता है, बस जाओ जाकर के इस कमरे में रहो, क्वारंटीन। आजकल कमरे दे दिए जाते हैं ना लोगों को क्वारंटीन, कोई जो है वो सफ़र करके आता है अपने घर में, तो आजकल क्या होता है कि घर वाले उससे मिलने जुलने की बजाय उसके साथ बैठ के खाना खाएं, उसके साथ जो है वो मामला डिस्कस करें, उनसे पूछें कि भाई आपका सफ़र कैसा गुजरा, क्या कैसी हैं आप, ये सब ना नहीं। अब उनको कमरा दे दिया जाता है कि जी आप पहले तो 14 दिन के लिए ना यहाँ पर जा करके सड़ें, ठीक है, और फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि अब आपके साथ मिलना है कि नहीं मिलना है। ठीक है ना, तो अब जो ये बस क्या करें, ऐसे हालात आ गए। बहरहाल, तो उलाइका युज़ौनल गुरफता, तो इन लोगों को भी कमरा दे दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि जन्नत के अंदर जो है ना ये कमरा जो है ये हमारी दुनिया के जैसा का कमरा नहीं होगा। तो फरमाया कि गुरफा के लुगवी मानी बाला खाना के हैं। बाला खाना, बाला कहते हैं ऊपर, जैसे दूध के ऊपर बलाई जम जाती है, ठीक है, तो बलाई ऊपर वाली चीज़ होती है ना, इस वजह से उसको बलाई कहते हैं। तो बाला खाना, ऊपर वाला खाना, ऊपर वाली जगह। तो फरमाते हैं कि जन्नत में मुकर्रबीन खास के लिए ऐसे गुरफात होंगे, ऐसे कमरे होंगे जो आम अहले जन्नत को ऐसे नज़र आएंगे जैसे ज़मीन वाले सितारों को देखते हैं। ठीक है, सितारे कितने ऊंचे होते हैं और कितने रात के वक्त अगर आप देखें तो झिलमिल कर, यानी चमक रहे होते हैं, दमक रहे होते हैं, झिलमिला रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ना इन बाकी लोगों को जो कि ये इबादुर रहमान वाली सिफात अपने अंदर पैदा नहीं कर सके थे, बस किसी तरह से रुड़कते फुड़कते हैं और सजाएं खाते खाते पिटते पिटाते बिल आखिर अपने ईमान की वजह से जन्नत में दाखिल हो गए। ठीक है ना, तो ऐसे लोग जो होंगे ना इनको इबादुर रहमान वालों के गुरफे इस तरीके से नजर आएंगे, बहुत दूर दूर बहुत दूर सितारों की माने नजर आएंगे। ठीक है, तो गुरफा की एक मिसाल हमें दुनिया में भी मिलती है, तो वो क्या है कि ये जो आप स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं या जो बहुत ही बड़े यानी मेट्रोपॉलिटन किस्म के सिटीज़ होते हैं, तो वहाँ पर आप जाएं ना तो वहाँ पर स्काई स्क्रेपर्स बनाई हुई होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई हुई होती है, इवन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी जो होती है ना वो बहुत ऊंची ऊंची होती है, ठीक है। तो इन बिल्डिंग्स के अंदर जो सबसे ऊंचा वाला एक अपार्टमेंट होता है ना उसको कहते हैं पेंट हाउस, ठीक है। ये जो पेंट हाउस होता है इसकी प्राइस भी सबसे ज्यादा होती है, और इस यानी इसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये सबसे बेहतरीन व्यू पेश कर रहा होता है, ठीक है ना। और ये ना एक एक अलामत होती है कि जी इसमें रहने वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा अमीर होगा, सबसे ज्यादा मशहूर आदमी होगा, ठीक है। तो ये जो पेंट हाउसेस होते हैं ना इनके अंदर जो है वो या तो स्पोर्ट्स स्टार्स रहते हैं या फिल्म स्टार्स रहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया के अंदर मामला यही हो गया है कि जो जितना घटिया काम करता है उसके पास इतने ज्यादा पैसे आते हैं। तो फिल्म स्टार सबसे ज्यादा घटिया काम करने वाला, लेकिन क्योंकि बाकी दुनिया भी जो है वो फिल्म स्टार बनने की ख्वाहिश रखती है, इस वजह से बाकी दुनिया जो है ना वो खूब पैसे निछावर करती है फिल्म स्टार्स के ऊपर। तो फिल्म स्टार जो है ना इस दौर के अंदर सबसे ज्यादा अमीर पर्सनैलिटीज बन जाती हैं, ठीक है। तो पेंट हाउसेस के अंदर ये फिल्म स्टार्स रहते हैं। उसी तरीके से दूसरे नंबर पर खेल कूद, जिसको कुरान जो है वो लहव लाद कहता है, राइट। खेल कूद को लहव लाद कहा जाता है, ठीक है। तो लहव लाद के ऊपर सबसे ज्यादा पैसे निछावर किए जा रहे होते हैं। इस वजह से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज भी जो है वो सबसे ज्यादा अमीर पर्सनैलिटीज होती हैं, ठीक है। तो इनके पास भी पेंट हाउसेस होते हैं। तो ये पेंट हाउसेस जो है ना सबसे महंगे होते हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता, कोई बता सकता है ऐसी जनरल नॉलेज के तौर पर कि हमारे मुल्क में जो है ना वो पेंट हाउस टाइप की अगर कोई चीज़ बन भी जाए ना तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा नहीं होगी बल्कि शायद सबसे कम होगी। ऐसा क्यों है? कम से कम पाकिस्तान में, इंडिया का मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट होता है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाएं तो कीमत कम हो जाती है। अमेरिका यूरोप में ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है वहां पर। तो क्यों क्यों होता है जी? तो पाकिस्तानी इसका जवाब देगा। हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर सबसे महंगा क्यों होता है और ऊपर जाते जाते प्राइसेस कम क्यों हो जाती? एनीवन? बिकॉज ऑफ स्टेयर्स। अच्छा, तो वो क्या, वो दूसरे नंबर पे ईज ऑफ एक्सेस। हाँ ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेयर्स एंड ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है। लेकिन आजकल तो तरक्की का जमाना है ना, आजकल तो मैकेनिकल एक्सेस होता है ना ऊपर जाने के लिए, लिफ्ट लगी हुई होती है ना, और बहुत ही ज्यादा फास्ट लिफ्ट लगी हुई होती है, ठीक है। तो फिर उसके बावजूद हमारे यहाँ क्यों ऊपर की जो मंजिल होती है वो सस्ती होती है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ बिजली चली जाती है बगैर बताए, ठीक है। तो वो जो एलिवेटर होता है उसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, तो जब बिजली नहीं होगी तो फिर एलिवेटर का क्या फ़ायदा, सही है। बल्कि शायद बीच में रुक जाएगी तो उल्टा ही जो है वो कुछ किसी का तो शायद दम घुट करके ही इंतकाल हो जाए, सही है। तो बिजली के मसले की वजह से जो है ना वो हमारे यहाँ ऊपर की जो स्टोरीज होती हैं उनकी प्राइसेस कम होती हैं और नीचे की ज़्यादा होती हैं। हालांकि नीचे की जो मंजिल होती है उसके अंदर चूहे भी आते हैं, कॉकरोच भी ज़्यादा आते हैं, ये सारे मसले भी होते हैं ग्राउंड फ्लोर के साथ, लेकिन फिर भी बिकॉज लिफ्ट आए दिन हमारे सिस्टम की तरह खराब हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो पेंट हाउसेज जो है ना वो बहरहाल जन्नत में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो जन्नत में ना फिर ऐसे ऊंचे ऊंचे मकामात होंगे कि जहां पर के जन्नत का व्यू सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा जहां से, जैसे कि ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती है ना बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो ये खास तौर पर जो है ना वो बीच के ऊपर बनाई जाती है, ठीक है, ताकि वहां से बीच का व्यू मिले और जबरदस्त, ठीक है। तो अब बीच का व्यू जो है वो थोड़ा सा पानी नजर आ जाता है बस, है ना, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर सूरज की कुछ किरणें नजर आ जाती हैं सुबह के वक्त, वो भी उठना पड़ता है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लोग इतना ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन जन्नत का तो, जन्नत में तो खाली ये पानी को थोड़ी होगा, जन्नत में तो ऐसी चीजें होंगी हम जिनका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो उनका व्यू जो है ना वो इनको उन पेंट हाउसेस से मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के लिए ये खास रहने वाले घर बनाए हुए हैं, गुरफे बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ कमरे नहीं होंगे बल्कि जन्नत के हिसाब से इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होगा और बहुत ही कुशादा होगा, और ईज ऑफ एक्सेस भी जो है ना, ये तो फिर माशाल्लाह उड़ते फिर रहे होंगे ये जन्नती लोग, इनको कुछ थोड़ी जो है वो इंतजार करना पड़ेगा बटन दबा के खड़े हुए हैं कि जी लिफ्ट आएगी तो फिर उसके बाद नीचे जाएंगे। ठीक है, तो आगे फरमाया कि मुसनद अहमद, बैहकी, तिरमिजी और हाकिम, ये सब हदीस मुबारक की किताबें हैं। इनमें हजरत अबू मालिक अशारी रजी अल्लाह तन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसे गुरफे होंगे जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बैरूनी हिस्सा अंदर से नजर आता होगा। आजकल भी जो नया डिजाइन आया है ना घरों का, तो वो भी कुछ ऐसा ही है कि बाहर से अंदर नजर आता है और जाहिर अंदर से बाहर नजर आता है। अजीब किस्म की कुछ ट्रांसपेरेंट उन्होंने शीशे की जो है वो दीवारें वगैरह बना दी हैं, क्योंकि इनमें जिस किस्म के लोग रहते हैं उनको वैसे भी पर्दे का तो कोई फिक्र होती नहीं है, उन्होंने बाहर भी ऐसे ही रहना होता है जैसा कि घर के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो बेगैरत और बेहया किस्म के लोग होते हैं, तो इस वजह से इनके घरों को भी जो है ना वो ऐसे ही बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन जन्नत के अंदर जो है ना वहाँ पर बेहयाई का तो कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं, बेपर्दगी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वैसे भी जो पर्दा, जो हिजाब वाला पर्दा होता है, वो तो जन्नत के अंदर दोबारा ख़त्म, जैसे पहले ख़त्म था, पहले था ही नहीं हिजाब, 5 हिजरी से पहले चेहरे का पर्दा नहीं था। ठीक है, औरतों मर्दों के दरमियान सेपरेशन नहीं थी। फिर उसके बाद सूरह अहज़ाब की आयात नाजिल हुई, सूरह नूर की आयात नाजिल हुई, तो फिर जो है वो अल्लाह ताला ने सेपरेशन कर दी मर्दों और औरतों के दरमियान, इसको पर्दा कहते हैं। ठीक है, तो ये पर्दा जो है वो चलेगा क़यामत के दिन तक, और उसके बाद वहाँ पर जा करके भी ये पर्दा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सतर का मामला है, ये नहीं होगा कि वहाँ पर लोगों के सतर भी खुले होंगे। सतर एक अलग चीज़ होती है, पर्दा एक अलग चीज़ होती है। पर्दा ख़त्म हो जाएगा, सतर पोशी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो घर होंगे ये ऐसे होंगे कि जिसके अंदर के बाहर से अंदर नज़र आ रहा होगा, अंदर से बाहर नज़र आ रहा होगा। लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गुरफे किन लोगों के लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने कलाम को नरम और पाक रखे। ठीक है, यानी लोगों से जो डीलिंग करता हो तो उसके अंदर नरम कलामी करे, सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करता हो, हर वक्त डांट डपट ना करता हो, और यानी बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करता हो, गालियाँ ना देता हो, फोहश किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करता हो। ठीक है, तो ये सब हो गया नरम और पाक रखने में, यानी जुबान, इसकी जुबान से दूसरे लोग महफूज हों। ठीक है, हर मुसलमान को सलाम करे, यानी सलामती जो है ना वो बांटता फिरे हर एक से। जब हम सलाम करते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मफहूम क्या होता है, इसके बहुत सारे मानी हैं। एक मानी इसका ये है कि तुम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाओ, तुम अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। ठीक है ना, अल्लाहु रकीबुन अलैक, अल्लाह ताला तुम्हारा रकीब हो जाए, तुम्हारा गार्ड बन जाए अल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम का एक ये मतलब होता है। दूसरा मतलब क्या होता है कि तुम मुझसे सलामती में आ जाओ, आई एम गिविंग यू प्रोटेक्शन फ्रॉम माय शर, मैं अपने शर से तुम्हें सलामती देता हूँ, मैं तुम्हें गजंद नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगी। ठीक है, ना जुबान से, ना हाथ पैर से, ना तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करके, राइट, किसी तरीके से मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा, तो तुम मुझसे भी सलामती में आ गए हो। अस्सलामु अलैकुम जो है ना, ये एक ऐसी दुआ है कि जो कि यानी अमन और आतिशी फैला देती है मुआशरे के अंदर। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में आकर के सबसे पहली जो नसीहत करी लोगों को, अफशुस्सलाम, के ए लोगों आपस में सलाम को फैलाओ, अस्सलामु अलैकुम, ये तरीका। इससे पहले अरब जो है वो एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कह के ग्रीट नहीं करते थे, बल्कि जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे या सबाह, सुबह, यानी सुबह बखैर, जैसे आजकल है ना गुड मॉर्निंग, तो वो लोग सुबह बखैर के, या मरहबा है, वेलकम वेलकम, इस तरीके से वो एक दूसरे को ग्रीट किया करते थे। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को अस्सलामु अलैकुम सिखाया है, और अब शैतान जो है फिर वापस इसको हमसे छीन करके जो है ना फिर वही काफिरों वाला तरीका, गुड मॉर्निंग कोई कर रहा है तो कोई हाय कह रहा है, तो कोई हेलो कह रहा है, और उसके ऊपर जो है ना वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ हम तो एडवांस हो गए, हम तो मॉडर्न हो गए। ठीक है, तो हर मुसलमान को सलाम करे। और दूसरों और लोगों को खाना खिलाए। अब लोगों को खाना खिलाने का मतलब ये नहीं कि यानी फजूल खर्ची करे और अपने इस्तेदाद से बढ़ करके कर्जे ले ले करके लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दे, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो आपके पास अवेलेबल हो आप खुश दिली के साथ अपने मेहमान को पेश करें। हत्ता कि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मेहमान अगर घर में आया है ना तो उससे पूछना कि जी आप कुछ लेंगे, ये गोया कि आपने आधा इनकार कर दिया मेहमान को, कि जैसे कि पूछ रहे हैं तो अब तो वो तकल्लुफन कहेगा कि नहीं जी रहने दें, बस मैं बस मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बल्कि पूछने की बजाय जो है जो आपके पास अवेलेबल है वो ला करके रख दें, ठीक है, और कुछ नहीं हो उस वक्त अवेलेबल पानी ला करके रख दें, पानी का ग्लास काफी होता है, ठीक है, खजूर ला करके रख दें, जमजम है तो जमजम ला करके रख दें, कुछ बिस्किट हैं बिस्किट ला करके रख दें, चाय का मौका है चाय बन सकती है आसानी के साथ चाय ला करके रख दें। घर वालों को जो है वो क्या कहते हैं उसको, एड़ी पे नचाने की बजाय जी चलो चाय बनाओ ये करो वो करो सब कुछ छोड़ दो चाय, इस तरह भी लोगों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है कि भाई आपने तो अपने दोस्त बुलाए हुए थे अब जो है वो बीवी को नचा रहे हैं कि जी बीवी जो है वो आपके दोस्तों की जो है वो खातिर मुतारत करे ये करे वो करे, इस तरह की चीज़ है, ठीक है। बस जो सादा सी चीज़ है वो मेहमान के सामने रख दें, और अगर ज़्यादा की गुंजाइश है आपके घर में नौकर चाकर हैं ठीक है वो कुछ कुछ जल्दी से कुछ तैयार कर सकते हैं तो वो ला करके रख दें, ठीक है। और खाना अगर मुमकिन है तो जो आपके घर में खाना पका हुआ है खाने का वक्त है तो उसके अंदर से कुछ रख दें, ठीक है। तो ये सादा चीज़ें हैं, इनके लिए ना हमने वो जो मुसीबतें पाली हुई हैं कि मुसीबतें पालना इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना, खाम खा जो है वो झूठी अपनी अनानियत के लिए अपना झूठा लोगों के दरमियान जो है ना बस ये कि लोग मुझे अच्छा समझेंगे और ये गलत तरीका है, बल्कि इखलास के साथ अल्लाह की रजा की खातिर और सुन्नत पर अमल करने की नीयत से जो है ना लोगों को खाना खिलाए जो कुछ अवेलेबल है वो चीज़, और रात को उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हों, ठीक है। तो अब ये सारी जो 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 सिफतें हैं ये इबादुर रहमान की सिफात के अंदर भी अल्लाह ताला ने मेंशन करी है, ठीक तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला गुरफ़े अता फरमाएंगे, कुरान में भी ये बात है और हदीस मुबारक के अंदर भी ये बात है, यही बात है। अच्छा आगे फरमाते हैं व युलक्कौना फीहा तहियतन व सलामा, यानी जन्नत की दूसरी नेमतों के साथ उनको ये एजाज भी हासिल होगा कि फरिश्ते उनको मुबारकबाद देंगे और सलाम करेंगे। यहाँ अच्छा तो फरिश्ते मुबारकबाद देंगे सलाम करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे जो है ना वो उनको जन्नत की नेमतों के और ज़्यादा मज़े आएंगे और ज़्यादा फ़ायदे होंगे। देखिए फरिश्ते जो हैं वो नूरी मखलूक हैं, ठीक है, हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर के हज़ार किस्म की परेशानियाँ और मुश्किलात और तकलीफ़ें, ये दुनिया जो है वो आजमाइश गाह है ना इम्तिहान गाह है, तो इस और यहाँ पर कितनी यानी आप फिजिकली भी जो है वो आपकी कितनी रिस्ट्रिक्शन होती हैं क्या क्या कुछ नहीं होता, ठीक है ना, बीमारियाँ भी लग जाती हैं और आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मुकाम के ऊपर जब फरिश्ते नाजिल होते हैं, अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं फरिश्ते नाजिल हो रहे होते हैं, तो इस गंद खाने में भी जिसको दुनिया कहते हैं इस गंद खाने में भी फरिश्तों के नुजूल की वजह से आपके दिल के अंदर सकीनत आ जाती है, इत्मीनान आ जाता है, राइट, बरकतें शामिल हाल हो जाती हैं। तो जब जन्नत में जाएंगे तो वहां पर तो गंद का नाम निशान नहीं होगा, वो तो है ही वो द हाउस ऑफ प्योरिटी है ना, सलामती का घर है। अब वहां पर आकर के जब फरिश्ते सलाम करेंगे और मुबारकबाद देंगे तो फिर तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, वहां की जो रहमतें हैं और वहां की नेमतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये यानी एक तो ये कि भाई इन लोगों की इज्जत और इकराम इतना किया जाएगा कि फरिश्ते आ आ करके इन लोगों को सलाम करेंगे, है ना, और दूसरा इसके अंदर फायदा क्या कि इनकी जन्नत के जो मजे हैं वो दोबाला हो जाएंगे फरिश्तों के आकर के मुबारकबाद और सलाम करने की वजह से। यहाँ तक मोमिनीन मुखलिसीन की खुसूसी आदात व आमाल और उनकी जजा व सवाब का जिक्र था, ठीक है, यानी 13 सिफात बयान करने के बाद एक तो बीच में वो तौबा वगैरह का भी जिक्र आ गया था और फिर उसके बाद जजा और सवाब का अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया। آخری آیت میں پھر کفار و مشرکین کو عذاب سے ڈرا کر سورت کو ختم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں اللہ تعالیٰ ثواب کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں عذاب کے ذکر سے, جہاں عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں ثواب کے ذکر سے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں جو ہے نا وہ ہینڈ ان ہینڈ قرآن مجید کے اندر چلتی رہتی ہیں. ایک باتیں جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد جہنم کا ذکر ہوتا ہے, جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جنت کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم, قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے. تو چونکہ قرآن براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے, جیسے قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, سب کے اندر ایسا ہی ہے. تو کہہ دیجئے ما یعبأ بکم, کہ ایک منٹ سے ذرا پروپر آپ کے سامنے, ہاں یعبأ کا ترجمہ بنے گا کہ پرواہ کرنا. ماں جو ہے وہ نفی کے لیے ہے, تو ما یعبأ نہیں پرواہ کرتا, بکم تمہاری, ٹھیک ہے, نہیں پرواہ کرتا تمہاری, ربی میرا رب, ٹھیک ہے. لولا دعاؤکم, لو کا مطلب ہوتا ہے اگر, ٹھیک ہے. لا دعاؤکم, دعا کا مطلب وہی دعا جس کو کہ ہم بھی دعا سمجھتے ہیں, تو دعاؤکم کا مطلب تمہارا دعا مانگنا. لا دعاؤکم, تم دعا نہیں مانگتے. لولا دعاؤکم, اگر تم دعا نہیں مانگتے, اگر تم دعا نہیں مانگتے تو ما یعبأ بکم ربی, میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی, میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں رکھتا اگر تم اس کو پکارا نہ کرتے, تم اس سے دعا, کیونکہ دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھ کر کے, قادر سمجھ کر کے اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے پکارنا. دس از ایکول ٹو دعا, ٹھیک ہے. تو اگر تم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے نا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں, زیادہ واضح اور سہل وہ ہے جس کو خلاصہ تفسیر میں اوپر لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی وقت اور حیثیت نہ ہوتی اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا نہ ہوتا, ٹھیک ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ نا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. بس شرط یہ ہے کہ دعا مانگی جائے, شرط یہ ہے کہ دعا مانگی جائے. اگر دعا ہی نہیں مانگ رہے آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ گارنٹی نہیں ہے رد نہ کرنے والی ہے. تو اس کے لیے نا بس لازمی کیا ہے, دعا مانگی جائے, ٹھیک ہے نا. تو اب دعا ہے کیا بھائی, کیسے مانگنی چاہیے, یہ ایک سیکھنے والا کام ہوتا ہے. جتنا سیکھتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی دعائیں اچھی ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اس کی جو بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو قادر سمجھتے ہوئے یعنی قدرت رکھنے والا, ہی ہیز دی ایبلٹی ٹو ریسپونڈ اینڈ ٹو فلفل مائی ریکوائرمنٹس, ٹھیک ہے نا, اس کو اس کا قادر سمجھتے ہوئے کہ ہاں وہ میری اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے, اس کے اوپر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, اس طریقے سے اپنے رب کو پکارنا, ٹھیک ہے, یعنی بڑا سمجھتے ہوئے, قادر سمجھتے ہوئے. اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ, یعنی جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, کہ جب دعا مانگی جا رہی ہو تو توجہ بھی اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے, توجہ بھی, فوکس بھی, سوچیں بھی, رائٹ, اپنا ذہن بھی, بلکہ ذہن سے آگے اپنا قلب بھی ہو جائے تو اور بھی زبردست چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فوکس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ تین جو ہے نا یہ تو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں, ان تین کے بغیر جو ہے وہ دعا ہی نہیں بن سکتی. آپ پڑھتے چلے جائیں بہت ساری چیزیں ہیں, آپ جو ہے وہ آمین 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 کے رٹ کو یاد, جب امریکہ میں ہوتا تھا بالکل شروع کے دن تھے تو उन दिनों ना बोस्निया और अल्बेनिया इन सब के ऊपर बहुत हालात चल रहे थे, बहुत मजालिम ढाए जा रहे थे बोस्नियन मुस्लिम्स के ऊपर। तो शौक हुआ कि भाई बोस्नियन मुस्लिम जो है ना वो बहुत सारी तादाद में अमेरिका एज अ रेफ्यूजी लाए जा रहे थे उन दिनों, तो उनको कुछ उनकी कोई मदद की जाए, उनके साथ मिलकर काम किया जाए। तो फिर वो अल्लाह ताला ने हालात बना दिए कि बोस्नियंस के साथ जो है ना वो कुछ दीनी काम वगैरह करने का मौका मिला उनके बच्चों को, या जिस काफ़ी अच्छा था कुरान पढ़ाता रहा। तो उनकी मस्जिद के अंदर जब नमाज होती थी ना, तो जब बाजमात नमाज होती थी तो नमाज पढ़ने के बाद ना उनका एक उनकी एक रिवायत थी, एक उनका कस्टम बन गया था। वो क्या कि उन्होंने बहुत सारी तस्बीहात जो है ना वो मस्जिद के कोने में रखी हुई होती थी, ठीक है। तो जैसे ही फर्ज नमाज का सलाम फेरते थे ना, तो एक आदमी जो है वो उन सारी तस्बीहात को उठाता था और उठा करके ना फेंकता था पूरे मजमे में, और हर बंदे को एक तस्बीह मिल जाती थी उसके अंदर से। तो फिर वो जल्दी 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 जो है ना वो तस्बीह पढ़ते थे, 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, वो तस्बीह पढ़ लेते थे। और उसके बाद जो इमाम जो है ना वो फिर हाथ उठा करके ना वो दुआएं मांगता था, जो अरबी की दुआएं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वगैरह, ठीक है। और सारा मजमा जो है आमीन 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 है, ऐसे जैसे कि एक कोरस चल रहा है, ठीक है। तो ये उनका एक रिवायत थी। अब किसी को पता नहीं होता था कि वो किस चीज़ पर आमीन कह रहा है, मतलब क्या है इसका, क्या मांगना है अल्लाह ताला से, कुछ कुछ नहीं पता, बस एक एक चल रहा है जो ऊपर से लोगों ने सीख लिया है वो कर रहे होते थे। अब जाहिर है जब मस्जिद से बाहर निकलते थे तो औरतों ने स्कार्फ उठा के फेंका नीचे, जो है वो उन्होंने जो ऊपर से कुछ चढ़ाई भी होती थी, माशाल्लाह अदब वगैरह उनके अंदर बहुत होता था, मस्जिद का अदब बड़ा ज़बरदस्त था उनके पास, ठीक है। लेकिन मस्जिद से बाहर निकल के ना फिर सब कुछ ही ख़त्म हो जाता था, फिर उनमें और नॉन मुस्लिम्स गोरों के अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था, ठीक है। तो ऐसी दुआएं जो है ना वो दुआ नहीं होती, उससे इंसान को फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर इन तीन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कोई दुआ मांगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सो मच सो कि अगर वो गुनाहगार हो, फासिक हो, फाजिर हो, तो भी अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। अगर इन तीन बातों का ख्याल रखते हुए कोई दुआ मांगे ना, अल्लाह ताला फासिक फाजिर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी भी दुआ को कबूल करते हैं। हत्ता के अगर कोई काफिर भी मांगे, काफिर, वो भी इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ मांगे ना, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कबूल करते हैं, राइट, कर सकते हैं, करते हैं, बल्कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, ठीक है ना। अल्लाह ताला कबूल, बल्कि बल्कि अगर जरा एहतियात को साइड पे रखा जाए ना, तो फिर तो ये आजिज ये भी कह सकता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं अगरचे के काफिर हो, ठीक है। बल्कि हमारे मशाइख तो यहां तक गए कि अल्लाह ताला ने तो शैतान की भी दुआ कबूल कर ली थी, क्योंकि शैतान ने भी जो है ना वो जब अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी ना, तो उसने भी इन तीनों चीजों का ख्याल रखा था, क्योंकि वो एक तो फोकस अल्लाह ताला के साथ ही था, अल्लाह ताला से बात कर रहा था, हमारी तरह नहीं कि दुआ मांग रहा है और इधर उधर सोच रहे हैं। हम तो ऐसी दुआ मांगते हैं जैसे कि एक फकीर जो है वो हाथ आगे फैलाया हुआ और सर और जो मुंह है ना उसका दूसरी तरफ देख रहा हो, ठीक है ना। तो अब 2 2 रुपए का सवाल कर रहा है, लेकिन आपको गुस्सा आएगा उसके ऊपर कि किस किस्म का तुम दुआ मांग रहे हो, है कि सॉरी किस किस्म की भीख मांग रहे हो, तुमने तो दूसरी तरफ चेहरा किया हुआ है, हाथ मेरी तरफ किए हुए, राइट। तो अल्लाह ताला की तरफ फोकस, तो शैतान जब अल्लाह ताला से बातें कर रहा था उस वक्त, तो वो कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं था हमारी तरह, वो बिल्कुल फोकस था अल्लाह ताला के साथ, ठीक है ना, बिल्कुल अल्लाह ताला से ही बात कर रहा था, ठीक है, और अल्लाह ताला को बड़ा ही समझ रहा था। शैतान अल्लाह ताला को अपने से छोटा नहीं समझता, शैतान शिर्क नहीं करता, राइट, वो शिर्क करता है अपने नफ्स को खाली शरीक ठहराता है, वो हमारी वो बुतों को शरीक नहीं ठहराता शैतान, ठीक है ना। तो शैतान जो है वो अल्लाह ताला को बड़ा समझ करके बात कर रहा था, और शैतान जो है वो अल्लाह ताला को कादिर समझ के बात कर रहा था कि अल्लाह ताला उसको मोहलत देने पर कुदरत रखते हैं। ये सारी चीजें करके शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, अल्लाह ताला ने अपने ऐन जलाल के वक्त, जब अल्लाह ताला उसके ऊपर शदीद गुस्सा थे, राइट, जलाल के आलम में आए हुए थे, अल्लाह ताला ने उस वक्त भी उसकी इस दुआ को कबूल कर लिया और उसको मोहलत दे दी। ठीक है ना, मोहलत दे दी क्योंकि उसने मोहलत ही मांगी थी। अगर वो माफी मांग लेता तो माफी भी दे देते, वो तो उसने मांगी नहीं माफी, मोहलत मांगी खाली उसने मरदूद ने, है ना, तो मोहलत मिल गई उसको। ठीक है, तो भाई जब ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं तो हमारी क्यों नहीं करेंगे? हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो नबी अलैहिस्सलाम के उम्मत ही हैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं, हम तो बहुत कुछ करते हैं, हम लेकिन दुआ मांगते ही नहीं हैं, हम दुआ नहीं मांगते, हम कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हम गोया के उस फकीरी की तरह से ना हम इंसल्ट कर रहे होते हैं, असल में अनोइंगली हो या नोइंगली हो हम इंसल्ट कर रहे होते हैं असल में। ठीक है ना, तो आप कुछ ना सीखें, कोई लंबी चौड़ी जो है ना वो बुकरातियां सीखने की जरूरत नहीं है, आप दुआ सीख लें, दुआ सीख लेंगे ना सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, हर चीज आ जाएगी उसके बाद, हर मसला हल हो जाएगा, दुआ सीख लें। ठीक है, लेकिन इतना समझ लें कि ये सीखने की चीज होती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये दुआ के बारे में फरमाया है कि अगर तुम्हारी तरफ से अल्लाह को पुकारना और उसकी इबादत करना ना होता ना, तो फिर तुम्हें तुम्हारी अल्लाह ताला को कोई परवाह ना होती। तो पुकारने में आप पुकारें कि अल्लाह मैं इबादत करना चाहती हूँ, मैं इबादत सीखना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी जो है वो आपकी बंदगी में गुजारना चाहती हूँ, तो पुकारने के बाद फिर अल्लाह ताला इबादत करने का सलीका भी अता फरमा देंगे, तरीका भी अता फरमा देंगे। ठीक है, जैसे कितने ऐसे वाकयात, कॉन्वर्ट मुस्लिम्स होते हैं ना, जो पहले जो है वो कोई हिंदू था, कोई ईसाई था, कोई यहूदी था, तो फिर वो मुसलमान हो जाते हैं ना, तो फिर मुसलमान हमारे जैसे जो है ना वो खुद तो कुछ करते नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा ना इंटरव्यू जरूर करते हैं उन कॉन्वर्ट्स का। ठीक है, तो ऐसे मुसलमानों ने फिर बहुत सारे कॉन्वर्ट्स के इंटरव्यूज कर करके जो है वो किताबें छापी हुई हैं, तो उन किताबों में आप जा करके देख लें या वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के वाकयात पढ़े हुए जाके देख लें कि आप कैसे मुसलमान हुए, तो उनमें से बहुत सारे यही बताते हैं कि हमने अल्लाह ताला से मांगा था, हत्ता कि यहाँ तक कि एथियस्ट था, राइट, उसको समझ में नहीं आता था कि अल्लाह है कि नहीं है। तो ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने इस तरह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह अगर तू है, अगर तू है तो मुझे सीधे रास्ते पर चला दे, जो रास्ता तुझे पसंद है मुझे उस रास्ते के ऊपर चला दे। वो अल्लाह ताला ने उधर से उसका हाथ पकड़ा और उसको दीन इस्लाम के अंदर दाखिल करके छोड़ा। ठीक है ना, तो ऐसा बंदा जो अल्लाह ताला की वजूदी के ऊपर शक रखता है, अगर वो भी इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसको भी रद्द नहीं करते। ठीक है, तो ये तो हो गया पुकारने के बारे में। अब उसके बाद इबादत करना ना होना, अब ये तो बाकी चीज है ना कि दुनिया के अंदर जो मजीद सारी चीजें मिलती हैं वो, यानी दुआ के साथ जो है वो दवा करने के ऊपर फिर बाकी सारी चीजें फॉलो होने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इबादत तो जब इंसान करता है, यानी इबादत करने का क्या मतलब, सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है बल्कि बंदा बन करके जिंदगी गुजारता है। ठीक है, तो इस दुआ हुक्म के अंदर ना पुकारना और इबादत करना, इबादत करने का मतलब है बंदा बन करके जिंदगी गुजारना, गंदा बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। ठीक है, अपने आप को छोटा बना करके रखना अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के सामने और जो अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं उनके सामने अपने आप को छोटा बना करके रखना। ठीक है ना, और छोटा जो होता है ना वो मान करके चलता है, मान करके चलता है, ये है इबादत, मान करके चलना। ठीक है, तो इस वजह से मुफस्सिरीन ने दुआ हुक्म के अंदर पुकारना भी रखा और फिर मान करके चलना भी रखा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो दुआ करता है और वो दुआ जो है ना वो यानी अपने हिसाब से करता है, बस बगैर सीखे हुए, बगैर माने हुए। ठीक है, और उसके बाद फिर जब उसके सामने अल्लाह ताला जो है वो रास्ते खोल रहे हैं कि भाई अब ऐसा कर लो, उसके पास चले जाओ, उसकी सोहबत में जाकर आना जाना शुरू कर दो, तो अब वहां पे जाकर के अकड़ दिखाता है। यानी पहले तो उसने मांग लिया जो अल्लाह ताला से मांगा, चाहे जैसे भी मांगा, वैसे तो इखलास से अगर मांगता ना तो फिर आगे भी गड़बड़ ना करता, लेकिन उसके मांगने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, तो इस वजह से ना आगे भी गड़बड़ चलती रहती है उसकी। तो उसके बाद जो है ना फिर अल्लाह ताला कभी जो है ना वो ऐसा भी तो होता है ना कि अल्लाह ताला जो है वो यानी एक बंदे को चीज दे देते हैं, लो जाओ मरो, ये भी तो एक तरीका है ना दे देने का, है जैसे आपकी आपके पीछे कोई लसूड़े की तरह से, वो पंजाबी जुबान में हमारे हजरत सर बोलते हैं, हमें तो लफ्ज़ का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो होता है ना, कोई किसी के साथ चिमट जाता है लसूड़े की तरीके से, है ना। हालांकि उसके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, उसको ना मिलती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इतना चिमट गया है तो अब जो देने वाला होता है ना वो कहता है जाओ जाओ मरो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी चीज़ें दे दी जाती हैं कभी किसी को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है वो अच्छी मांग रहे हो, आप गलत चीज़ें भी तो मांग रहे होते हैं ना बहुत सारी, ठीक है। तो ऐसा जो बंदा होता है ना जो कि इस तरीके से दुआ मांग रहा होता है ना, तो वो फिर ना आगे जा करके भी जो है ना वो गलत काम ही कर रहा होता है, यानी फिर वो मान के नहीं चल रहा होता, मान के नहीं चलता फिर उसकी इस दुआ के भी उसको फायदा नहीं होता, ठीक है। बहरहाल तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो अगर तुम उसकी इबादत नहीं कर रहे होते तो फिर अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला को कोई परवाह ना होती तुम्हारी, क्योंकि इंसान की तख्लीक का मंशा ही ये है कि वो अल्लाह की इबादत करे, जैसे दूसरी आयत में है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने नहीं तख्लीक किया जिन को और इंस को सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। लियअबुदूनी, एक्चुअली नून के बाद एक या है और या जो है ना वो छुपा होता है, उसको लिखते नहीं है, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हर अरबी जानने वालों को पता है कि जब इस तरीके से वर्ब इस्तेमाल किया जाता है जिसके आखिर में नून आ रहा हो, तो उस नून के साथ जो है नून जेर के साथ आ रहा हो, तो जेर का मतलब है कि या है इसके साथ, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये वर्ड होता है लिया बुदूनी, कि ताकि तुम मेरी इबादत करो, इसलिए पैदा किया है, ठीक है। तो ये है हमारा मकसद है हयात, बंदा बनने बन करके ज़िंदगी गुजारना, इबादत करके ज़िंदगी गुजारना, ठीक है। तो इससे बात पता लग गई कि अगर आप अपने मकसद हयात को पूरा करेंगे तो फिर आपको हयात का फ़ायदा होगा, और अगर मकसद हयात को पूरा नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो शर्मिंदगी तो होगी, वो अपने मकसद को पूरी करने वाली नहीं होगी। ये तो एक आम ज़ाब्ता बयान हुआ कि बग़ैर इबादत के इंसान की कोई कदर कीमत और वक़्त व हैसियत नहीं है। इसके बाद कुफ़ार व मुश्रिकीन जो रिसालत और इबादत ही के मुनकिर हैं, उनको ख़िताब है कि फ़क़त कज़्ज़बतुम, कि तहक़ीक तुमने सब चीज़ों को झुठला ही दिया है, अब तुम्हारी कोई वक़्त अल्लाह के नज़दीक नहीं है। ठीक है, अब काफिरों की तो अल्लाह ताला के नज़दीक कोई वक़्त ही नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी को झुठलाते हैं, फिर नबी जो बातें लेकर के आए उन सारी बातों को भी झुठला देते हैं, जैसे आखिरत को झुठला दिया और कुरान को झुठला दिया और सारी चीज़ों को झुठला दिया, तो इनकी तो अल्लाह ताला के नज़दीक को कोई वक़्त नहीं है, तो फिर काफिरों को अल्लाह ताला इतनी इज्जत क्यों दे देते हैं, और उल्टा खाली नहीं कि इज्जत दे देते हैं बल्कि जो मुसलमान होते हैं उन मुसलमानों के ऊपर इनको हुकूमत दे देते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वही सादा सी वजह है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, बस सादा सी वजह है कि भाई मुसलमान जो कलमा पढ़ रहा होता है अल्लाह ताला को मानने का इकरार कर रहा होता है लेकिन अमलन इनकार कर रहा होता है, लेकिन दिल से और ज़ुबान से इकरार कर रहा होता है, ठीक है ना। तो अब दिल और जुबान से जो वो इकरार कर रहा होता है ना, तो इसकी वजह से जो है ना उसका अल्लाह ताला के साथ एक डिफरेंट मामला हो जाता है, ठीक है। ये मिसाल ऐसे ही है जैसे कि हमारे मशायख फरमाते हैं कि अपना बच्चा जो होता है ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी, उसकी तबीयत की जिम्मेदारी जो होती है वो माँ बाप की होती है, उन्होंने ली हुई होती है, और जो गली का बच्चा होता है, होता वो भी बच्चा है, होता वो भी मासूम है, राइट, बच्चा है वो, लेकिन वो अपना नहीं है ना, वो तो दूसरे का है, वो तो यानी उसकी जिम्मेदारी तो वैसे नहीं होती ना जैसे कि अपने की होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बंदे तो सारे के सारे हैं, काफिर भी अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, मखलूक हैं अल्लाह ताला की, मुसलमान भी अल्लाह ताला की मखलूक है, फ़र्क ये है कि ये मानने वाले हैं वो ना मानने वाले हैं, ठीक है। तो जो मानने वाले होते हैं ना, तो फिर उनकी तरबियत की जाती है, ठीक है ना, उनकी रोक टोक की जाती है, उनको जो है ना वो यानी अगर वो गलत काम करें तो उनको उधर ही सीधा किया जाता है ताकि वो अपना नुकसान ना करें, ठीक है। और जो ना मानने वाले होते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि अभी कर लो जो करना है, तुमसे बाद में निपटा जाएगा, ठीक है। तो ये मामला जो है काफिरों का है, कि उनके साथ जो है ना वो निपटने वाला मामला वो जहन्नुम के अंदर आखिरत के दिन में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, और जो अपने हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत के मानने वाले लोग हैं जिनको उम्मत इजाबत कहा जाता है, तो वो अगर दुनिया के अंदर खराबी का मामला करते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया में जो है ना फिर उनको उनकी इसलाह शुरू कर देते हैं और उनको जहन्नुम के अंदर उनकी इसलाह की बजाय यहीं पर उनकी इसलाह शुरू हो जाती है। इसी वजह से मुसलमानों के साथ जो है ना वो ये मामला होता है कि काफिरों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है ताकि काफिर उनको फिर ठीक करें, ठीक है ना। जैसे कि और भी खैर बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन फिर उसका टाइम नहीं है। तो इन काफिरों को फिर अल्लाह ताला खिताब करते हैं, फ़कत कज़्ज़बतुम, यानी तुमने तो सब चीज़ों को झुठला ही दिया है, अब तुम्हारी कोई वक़्त अल्लाह के नज़दीक नहीं है। फ़सौफ़ यकूनु निज़ामा, यानी अब ये तकज़ीब व कुफ़्र तुम्हारे गले का हार बन चुके हैं। निज़ामन का मतलब ये तुम्हारे साथ ना लाजिम हो गए, ये तुम्हारे गले का हार बन गए का मतलब यही है कि नाउ दिस इज पार्ट ऑफ यू, ठीक है। ये जो तकजीब तकफीर तुमने करी है और ये तुम्हारे साथ लगे रहेंगे यहाँ तक कि जहन्नुम के दायमी अजाब में मुब्तला करके छोड़ेंगे। वनाऊज़ बिल्लाह मिन हाले अहलिन नार, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मौत से पहले पहले तक तो काफिर के पास ऑप्शन था कि वो तौबा कर ले और इस कुफ्र को जो है वो अपने पास से दूर कर दे, ठीक है। लेकिन जब उसको मौत आ गई, अब वो कब्र में तौबा नहीं कर सकता, कब्र में इस कुफ्र को अपने से दूर नहीं कर सकता, अब ये परमानेंटली इसके साथ लग गए। तो अब कब्र में भी इसके साथ काफिरों वाला सुलूक होगा और मैदान हशर में भी काफिरों वाला ही सुलूक होगा और जहन्नुम के अंदर भी काफिरों वाला सुलूक होगा। अब ये परमानेंटली इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो तौबा की जो मियाद थी वो तो इस दुनिया की ज़िंदगी थी, इसी के अंदर जो है ना वो कुफ्र से भी तौबा करनी है, और अगर कोई गुनाहों के अंदर मुब्तला है तो उसको भी इस दुनिया की ज़िंदगी में ही तौबा करनी है। यहाँ पे इस तफसीर को मुकम्मल करके हज़रत ने दुआ मांगी, व नऊज़ु बिल्लाहि, और हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला की, मिन हाल अहलिन नारी, जहन्नुम वाले लोगों के हाल से, कि हमें भी जहन्नुम वाले लोगों के हाल में कहीं मुब्तला ना कर दिया जाए। क्योंकि जो ईमान वाले होते हैं ना तो वो डरते रहते हैं, ठीक है, वो करते भी रहते हैं डरते भी रहते हैं। अब मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या क्या इबादतें करी होंगी, क्या क्या दीन की खिदमतें करी होंगी, एक तफसीर लिख करके चले गए, जो लाखों इंसान जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं और फ़ायदे उनके सब सारे फायदे जो हैं वो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम अमाल के अंदर ऐड होए चले जा रहे हैं। तसव्वुर तो करें कि उनका नाम अमाल कहाँ से कहाँ पहुँच रहा होगा, राइट, एवरी मोमेंट अल्लाह ताला उनको क्या से क्या मुकाम अता फरमा रहे होंगे। और ये तो एक मुफस्सिर है खाली 20वीं सदी के, तो पीछे मुफस्सिर गुजर गए जिनसे कि उम्मत के कितने हजारों लाखों लोगों ने फायदे उठाए, उनका क्या मुकाम बनता होगा जब उनकी लिखी हुई किताबें वो लोग पढ़ते होंगे अमल करते होंगे आगे पढ़ाते होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग भी जो है ना, ऐसे लोग नऊज़ु बिल्लाह मिन हाल अहले नार की दुआएं मांग रहे हैं। अब हमारे लिए जिनके पास कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई हमने ऐसी दीन की खिदमत नहीं करी है, कोई हम पीछे नाम भी नहीं छोड़ करके जाते इस दुनिया से, तो ठीक है ना, तो हमें तो कितना ज्यादा करने की जरूरत है अल्लाह ताला से, तो कितना मांगने की जरूरत है, ठीक है। तो किसी को अगर कोई सवाल है तो वो आप अभी पूछ लीजिए, वरना वक्त ही ख़त्म हो गया क्लास का। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फुरकान की तफसीर जो पढ़नी हमने रमज़ान मुबारक में शुरू करी थी, पहली रमज़ान मुबारक से, वो भी आज मुकम्मल थी। दुआ की रिक्वायरमेंट में अल्लाह को कादिर समझना, तवज्जो करना, और तीसरी बात ये थी कि अल्लाह ताला, सबसे पहली बात थी कि अल्लाह ताला को बड़ा समझना और अपने आप को छोटा समझना, ठीक है ना। वरना पुकारना मांगना ये तो आप किसी बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, गिलास पानी का गिलास ला करके दो, ओ छोटे ये करो मेरे लिए काम है, तो पुकार तो रहे हैं ना आप किसी छोटे को भी, लेकिन वो पुकारना दुआ नहीं बन सकता क्योंकि आप उसको छोटा समझ करके पुकार रहे हैं, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा पुकारना जो है ये दुआ नहीं बनता। इसी वजह से सबसे पहली चीज़ ये थी कि अल्लाह ताला को सबसे बड़ा, यानी अल्लाह ताला को बड़ा समझना। तो सबसे बड़ा समझना जो है वो तो फिर ईमान जैसे जैसे मजबूत होते हैं ना, वैसे वैसे अल्लाह ताला की अजमत और बढ़ती है और अपनी हकीकत और छोटी होती है। लेकिन इनिशियली एक आम आदमी के लिए कि जिसका ईमान जो है बस एक नॉर्मल लेवल का बस एक है, तो वो अल्लाह को बड़ा, अपने को छोटा, ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई। बातें तो इसमें खैर और भी बहुत सारी शामिल की जा सकती हैं। हमारे हजरत पीर फकार अहमद दसबंदी दावा में कहते हैं कि एक बाकायदा किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं है, पतली किताबों में से एक है, उसका नाम है दुआएं कबूल ना होने की वजूहात, ये उसका टाइटल है। उस किताब को पढ़ना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त हजरत ने उसके अंदर पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है ना। और फिर आखिर में बहुत सारी कुरान और हदीस की दुआएं भी लिखी हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो दुआ, वो किताब जो है वो चाहिए कि हम एक्वायर करने की कोशिश करें और उसको मुताले में रखें, कैसे मांगनी है, क्या मांगनी है और क्या नहीं मांगना है, ये भी इसका हिस्सा है, क्या नहीं मांगना है, ठीक है। फोकस करने का क्या तरीका है, फोकस करने का तरीका जो है ना वो देखें, दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें फोकस जो है ना वो तो आपके दिल की कैफियत बना देती है ना। दिल में जब इस्तराब होता है ना, जब दिल टूटता है, जब दिल परेशान होता है ना, तो फिर वो यानी अल्लाह ताला की तरफ फोकस कर लेता है, ठीक है, वो फोकस हो जाता है। तो अब इसमें असल में जब बंदा परेशान होकर के अल्लाह ताला से मांगता है ना, तो उसको ना फोकस सीखना नहीं पड़ता, उसको किसी से जाकर के ट्रेनिंग नहीं हासिल करनी पड़ती फोकस करने की। वो जो परेशानी और इस्तराब होता है ना, वो उसको फोकस करना सिखा देता है, ठीक है। हम जो आपको बता रहे थे ना कि जी फोकस किए बगैर दुआ नहीं होती, हम तो वो कह रहे थे कि हम जब परेशान नहीं होते है ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, माशाल्लाह दिन की रोटी भी मिल रही है, तीन दफ़ा रोटी भी मिल जाती है, पानी भी मिल जाता है, गर्मी के मौसम में एसी भी मिल जाता है, सर्दी के मौसम में हीटर भी मिल जाता है ना, घर के अंदर बच्चे भी हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, तो अब तो कोई परेशानी नहीं है ना, तो अब दुआ कैसे मांगे भाई, है ना, अब कैसे फोकस करें भाई। हम उस वाले फोकस की, हम उस कैफियत की बात कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि हम ठंड में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो हम दुआ मांगना भूल जाते हैं, है ना। फिर वो होता है कि जी नमाजें तो पढ़ लेती हूँ, ये तो कर लेती हूँ, वो तो कर लेती हूँ, वज़ीफ़े भी पढ़ लेती हूँ, दुआ नहीं मांगी जा रही होती, है ना। ये मसला होता है असल में, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि अब कैसे फोकस बनाया जाए। तो ये जो है ना फोकस सीखना पड़ना, ये इस कैफियत में जब एवरी थिंग इज़ वेल एंड गुड, तब सीखना पड़ता है फोकस। अब ये सवाल आपका जो है ना इस कॉन्टेक्स्ट में अगर है तो फिर ठीक है, ठीक है। ये फोकस कैसे सीखें, ये फोकस जो है एक तो जिक्र करने से, कल्बी जिक्र, राइट। दूसरा जो है ना, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, है आपने अल्लाह वालों की दुआएं सुनी हैं कभी, कभी बयान सुना है गौर से, और बयान के बाद में जो दुआएं होती हैं हमारे हजरत की दुआएं हैं, माशाल्लाह मशाइख की जो दुआएं होती हैं, उनको कोई मार नहीं पड़ रही होती, आपका क्या ख्याल है? ये मशाइख जो दुआएं करते हैं उनको कोई पीट रहा होता है, उनका बच्चा मर रहा होता है, कोई उनकी कोई नौकरी जारी होती है, कोई उनका कुछ मसला चल रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं अपने परवरदिगार से, बहुत राजी होते हैं, लेकिन आप उनकी दुआएं सुने, ऐसे रो रहे होते हैं, ऐसे बिलक रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं मौत आ रही है इनको, है जैसे जहन्नुम सामने खड़ी हुई है इनके, है ना भाई। तो वो तो परेशान नहीं होते, फिर ऐसी दुआएं कैसे कर लेते हैं? ये जो दुआ करते हैं ना इत्मीनान की हालत में, जो लोग दुआएं करते हैं ना ये वाले, ठीक है ना, इन्होंने दुआ कर, इन्होंने सीखा होता है फोकस बनाना, सीखा होता है इन्होंने अपने मशायख से, सीखा होता है मशायख की दुआओं को तवज्जो के साथ सुना होता है, ठीक है, और फिर उन जैसा बनने के अल्लाह ताला से दुआएं मांगी होती हैं, अल्लाह हमें भी ऐसा बना दीजिए, अल्लाह हमें भी ऐसी दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा दीजिए, ठीक है ना। तो हम इसकी बात कर रहे थे, वरना तो कश्ती जब डूब रही होती है तो वो तो काफिर भी अल्लाह ताला से मांग रहा होता है फुल फोकस के साथ, है ना। जहाज जब क्रैश होने लग रहा होता है ना कि जी अब ये जहाज नहीं बचेगा, तो उसके अंदर बैठा हुआ ना हर बंदा फिर अल्लाह ताला से फुल फोकस के साथ दुआएं मांग रहा होता है ना भाई। तो उधर कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बात समझ आ रही है जी। ये जो सिफत हमने पढ़ी इन सब पर अमल करना कैसे आसान हो सकता है? ये जो सिफत हमने पढ़ी, अच्छा ये जो सिफात हमने पढ़ी है 13 सिफात, इन सब पर अमल करना कैसे आसान हो सकता है? इन सब पर अमल करना आसान ऐसे हो सकता है कि सहाबे कराम ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो इखलास के साथ ताल्लुक बनाया था ना, इस्लाही ताल्लुक, सहाबे कराम ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ फुल इखलास के साथ एक इस्लाही ताल्लुक बना लिया था। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम उनका तज़किया करते थे ना, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबा का तज़किया किया करते थे, लेकिन मार पकड़ करके तज़किया नहीं किया करते थे, पीट पीट करके तज़किया नहीं करते थे, बल्कि सहाबा ने अपने आप को पेश किया था तज़किये के लिए। सहाबा ने अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया था, सुपुर्द किया था, आप हमारी इस्लाह करें, आप हमारी गलतियों पे हमें टोकें, आप हमें सीधा रास्ता दिखाएं, बुरे रास्ते से रोकें, हम आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तो जिस तरह सहाबा ने अपने आप को पेश किया था ना, उसी तरीके से हमें भी अपने शेख के सामने इस तरीके से पेश करना होता है। दिल की नियत अल्लाह की रजा, आखिरत की जजा। ठीक है ना, और मैं ऐसा बनना चाहता हूं, ऐसे बनने चाहता हूं जैसे कुरान में अल्लाह तूने लिख करके बता दिया मुझे, तूने मुझे बता दिया कि ऐसा ऐसा बनने से तो मेरे बंदे बन जाओगे। ठीक है, मैं ऐसा बनना चाहती हूं। ठीक है ना, ये हो गया आपकी दिल की नियत। अब इस दिल की नियत के साथ अपने आप को फिर पेश करेंगे, फिर अल्लाह ताला जो है ना वो फिर ऐसा, इसको कहते हैं हमारी जुबान में चक्कर चलाएंगे, ऐसा चक्कर चलाएंगे कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला को खूब आता है, हमें अल्लाह ताला को फिर ना वो चलाना नहीं पड़ेगा, अल्लाह आप मुझे ऐसे सिखाइए, ऐसे बताइए, ये करिए वो करिए, अल्लाह ताला नोज व्हाट टू डू। ठीक है ना, तो फिर अल्लाह ताला ना इस तरीके से हमारी इस्लाह करवाएंगे और हम भी बन जाएंगे, हम भी बंदे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास अल्लाह के नबी हैं नहीं, ना तो हम सहाबी हैं, ना हमारे शेख जो हैं वो अल्लाह के नबी हैं। तो भाई, तो हम तो 21वीं सदी के रहने वाले एक मुसलमान हैं, उसी तरीके से हमारा शेख भी जो है वो भी 21वीं सदी का रहने वाला एक मुसलमान है। ठीक है ना, तो अब यही ये हमारा हमारा इस्लाह का तरीका है, ये हमारे इस्लाह की कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भी जो है ना जब अपने आप को पेश करेंगे तो अल्लाह ताला फिर हमारे शेख को हमारा हमारी इस्लाह का सबब बना देंगे, उसको उसके हाथ में फिर हमारे लिए शफा रख देंगे और हमारी रूहानी इस्लाह हो जाएगी, हम भी अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। ठीक है ना, यही तरीका है, सुन्नत तरीका जिसको कहते हैं, क्योंकि सहाबा कराम ने यही तरीका इस्तेमाल किया था और नबी अलैहिस्सलाम ने इसी तरीके से सहाबा कराम की इस्लाह फरमाई थी। यही सुन्नत तरीका है और इसी सुन्नत तरीके के जरिए से जो है वो हमेशा इंसानों की इस्लाह होती रही है और होती रहेगी। ठीक है जी, तो दुआएं अल्लाह ताला से मांगे और शेख से जो है वो तरीका सीखे, ये दो सीधी सीधी बात है। चलो, आपको सवाल है। अच्छा, आखिरी बात क्लास ख़त्म करने से पहले कि अल्लाह ताला की तौफीक से और अपने मशायख की दुआओं की वजह से, और कोई नहीं, हमें तो खुद पता नहीं कि क्या कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बस यही एक समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई। और रहमत भी क्यों फरमाई, हम कोई बहुत ही बड़े चीते नहीं थे, हम कोई बहुत ही यानी हम ऐसे बड़े हमने इबादतें कर ली थी और क्या कर लिया था क्या नहीं कर लिया था, इस वजह से अल्लाह ने हमारे ऊपर ख़ास रहमत फरमा दी, दूसरों पर तो अल्लाह ताला ने रहमत नहीं फरमाई। नहीं, बस हमारे मशायख की दुआएं हैं, हमारे मशायख ने जो है ना वो बस काम लगाया हुआ है, अल्लाह ताला की तौफीक से बस मशायख की बात मान करके चले चले जा रहे हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चला रहा है। तो इसकी वजह से ना फिर ये जो हमने सूरह फुरकान की तफसीर पढ़ी है ना, पहली रमजानुल मुबारक से पढ़नी, पीछे मुड़ करके देखते हैं हैरानगी होती है, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर डिस्कस हो गया, क्या क्या चीज़ें। आप क्योंकि आपके पास तो मेरी किताब नहीं है ना, तो मैंने किताब के ऊपर ना छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए होते हैं साथ साथ। ठीक है ना, ये पॉइंट इस आयत के अंदर, ये पॉइंट इस आयत के अंदर, ये पॉइंट इस आयत में। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ तो मुझे खुद हैरानगी होती है, पता नहीं क्या क्या बातें इसके अंदर डिस्कस हुई हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर कितनी कितनी तफसील के साथ, है ना। तो भाई अब ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई है, इनको रिकॉर्ड भी कर लिया गया है, ठीक है ना, और वेबसाइट के ऊपर भी इन सारी चीज़ों को डाल दिया गया है, ठीक है। तो अब इनसे फ़ायदा उठाना तो अब तो हमारे काम, हमारे इख्तियार में है ना जी, हम इनको, आप खाना पकाएं, आप घर का काम करें, आप इनको प्ले कर सकती हैं, ठीक है ना, आप किताब खोल करके सामने बैठ करके कभी आहिस्ता 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 कुछ कुछ चीज़ें जो है वो देख सकती हैं। तो इंशाल्लाह ये जो आपकी तकरार होगी, रिपीटिशन होगी, तो इससे जो है ना वो सारी चीज़ें आपके जहन में फ़्रेश हो जाएंगी और फिर आपके लिए जो है ना वो उन पर अमल करना भी आसान हो जाएगा और आपका इल्म जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे तो हैं, लेकिन ये हमारी अपनी चॉइस पर है कि हम इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि नहीं उठाना चाहते हैं। सूरह फुरकान को एक तायराना नज़र हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने एक एक दो दो तीन तीन आयतों की शक्ल में इतने सारे मजामीन इसके अंदर रख दिए हैं। बंदगी का मज़मून है और यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो एतराज़ किया करते थे वो लोग, काफिर लोग, बिल्कुल वही एतराज़ात जो है वो आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरासा के ऊपर लोग करते हैं, यानी उलमा और मशाइख के ऊपर। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उन, सॉरी, अल्लाह ताला ने जो उन एतराज़ात के जवाब दिए थे, बिल्कुल वही जवाब जो है वो आज के दौर के अंदर उलमा और मशाइख के डिफेंस के अंदर भी आए होते हैं, राइट। फिर जन्नत के बारे में, जहन्नुम के बारे में, और फिर जो है वो दोस्त के बारे में कि जहन्नुम में जाकर के बंदा कहेगा कि काश के मैंने इस बंदे को दोस्त ना बनाया होता, ऐसे शख्स को अपना दोस्त नहीं बनाया होता, ठीक है। तो दोस्ती के ऊपर हमने कितनी सारी बातें करी थी, और रूहानी बीमारियों के ऊपर कितनी सारी बातें हो गई थी इसके अंदर। फिर उसके बाद जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको मकसूद बना करके आप नहीं अपने दीन को उसके मुताबिक फिट करने की कोशिश कर सकते। इस टॉपिक के ऊपर कितनी सारी बातें हुई, तो यानी अजीब हैरानगी होती है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या बातें इसके अंदर करवा दी हैं। तो बस सारी चीज़ें जो है वो हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर अब हैं, बस हमने क्लिक करना है और उसको प्ले कर लेना है और उसके साथ जो है वो फिर हमने अपना वक्त गुजारना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके बदले में हमें बेहतरीन इल्म और अमल की तौफीक अता फरमा देंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो यार जिस क्लास को ख़त्म करता है। तो आखिर दावाना अनिल, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।